आयत नंबर 111 से देखिए, वकालू लन यदखुल الجنت الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. इनका कहना कि कोई शख्स जन्नत में ना जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो या ईसाइयों के मुताबिक वो ईसाई ना हो, ये इनकी तमन्नाएं हैं। इनसे कहो कि अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। दरअसल न तुम्हारी कुछ खसूसियत है और न किसी और की। हक ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की इताअत में सौंप दे और अमलन नेक रविश पर चले, इसके लिए इसके रब के पास इसका अजर है। ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ या रंज का कोई मौका नहीं। बड़ी खूबसूरत बात है इस आयत में, और वो है कि जो अपने चेहरे को अल्लाह के सुपुर्द कर दे। यहूद और नसारा अपने दौर के दो फिरका वाराना नाम थे। अल्लाह ताला ने जिस गिरोह को इंसानों की हिदायत के लिए चुना, हर दौर में उनका नाम मुसलमान था, मुस्लिम कहलाते थे। लेकिन यहूद और नसारा ये दो ऐसे नाम है जो इन्होंने कुछ जगहों से निस्बत की वजह से अपने रख लिए। अल्लाह सुबहान तला इन आयात में इनकी इस खुशफहमियों का तस्करा फरमाते हैं कि देखो, इन लोगों ने अपने आप को खुद ही जन्नत का ठेकेदार समझ लिया। इनके ख्याल में जन्नत में जाने के लिए इनकी इजाजत की जरूरत है। यहाँ हम अपने लिए एक इख्तसाब का नुक्ता लिखेंगे कि क्या मैं भी अपने नाम के साथ ये लफ्ज तो नहीं लगा लेती कि सिर्फ फला मसलक या फला फिरका जिससे मैं ताल्लुक रखती हूँ वही जन्नत में जाएगा। क्या मैंने ये तो नहीं सोच लिया हुआ कि मैं चूंकि मुसलमान हूँ तो मुझे कोई जन्नत में जाने से रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला ने ऐसी चीजों को अमानी कहा। असल बात यह है कि जन्नत में किसी का जाना या न जाना, उसकी बुनियाद क्या है कि मन असलम वजहहु लिल्लाह। इंसान जब अल्लाह ताला के आगे अपने आप को इस तरह डाल दे जैसे मुर्दा नहलाने वाले के हाथ में खुद को डाल देता है, तब तक उसकी वो बात पूरी नहीं बंद होती जो अपनी जुबान से कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। हम सबको अपने लिए ये पॉइंट नोट करना चाहिए कि मैंने अपनी जिंदगी का मका है कि हर हुक्म में अल्लाह की बात को सुनकर समेना व अताना कह दूं और अल्लाह के आगे झुक जाऊं। फिर इसके बाद आगे अल्लाह ताला ने इन्हीं की कुछ मजीद बातों का तस्करा फरमाया। वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन, यहूदी कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ भी नहीं, यानी एक दूसरे को लट डाउन करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता, ये कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता, हालांकि अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं कि दोनों ही किताब पढ़ने वाले हैं। यहाँ नोट कीजिएगा, अल्लाह ताला किताब वालों का इखलाक बयान कर रहा है कि पढ़े लिखे लोगों को तो इस तरह नहीं झगड़े करने चाहिए कि तुम्हारा मसलक क्या है, तुम्हारी जमात क्या है, तुम किस ग्रोह से ताल्लुक रखते हो। पढ़े लिखे लोग जब इस तरह के इख्तलाफात करते हैं तो दूसरे लोग जो दीन से भी दूर होते हैं वो और दूर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें करते हैं तो फिर हम तो इससे ही बेहतर हैं। तो हम सब के लिए भी इसमें अपने मुहासबे की बात यही है कि क्या मैं पढ़ लिख कर पढ़े लिखे लोगों का नाम तो बदनाम नहीं कर रही? क्या मेरा कुरान पाक के साथ ताल्लुक जुड़ना दूसरे लोगों को दीन से दूर तो नहीं कर रहा? अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। और इसी किस्म के दावे इन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं है। ये इख्तलाफात जिनमें ये लोग मुब्तला हैं, इनका फैसला अल्लाह क़यामत के रोज करेगा, और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के लिए मुकर्रर करदा इबादत खानों में उसके नाम की याद से रोके और उसकी वीरानी के दर पे हो। यहाँ नोट कीजिएगा कि जो ही फिरका वारियत की बात हुई, फौरन बात आ गई मस्जिदों की वीरानी की। आज अगर हम भी अपने इर्द गिर्द देखें, पूरी दुनिया में हर कोने में अल्लाह ताला ने जहां जहां मुसलमान गए वहां दीन के नाम पे उनको इदारे भी दिए, मस्जिदें भी दी। लेकिन क्या हुआ कि आज वही जगह हमारी एक दूसरे के झगड़े का सबब बन गई? क्या आज हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वालों को रोकने लगे? क्या हम उस वक्त उन लोगों को नहीं रोकने लग गए इन चीजों के साथ? याद रखिए कि जहां भी सिर्फ एक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के अलावा कोई दूसरा नाम इस्तेमाल किया जाएगा तो हर जगह इख्तलाफ होगा। अब यहां से कुछ ऐसी आयात आगे मजीद हम पढ़ेंगे जिससे अल्लाह ताला मुसलमानों की जहन साजी करते हैं, और वो क्या कि सच्चा दीन इस्लाम है। हर दौर के लोग एक दूसरे को इसी नाम के साथ पुकारते थे, इसी पे खुश होते थे। लेकिन जब लोगों की मोहब्बतों के मरकज बदल गए, जब लोगों को नाम ज्यादा प्यारे होने लगे, जब लोगों को शख्सियात ज्यादा प्यारी होने लगी, तो उन्होंने अल्लाह के नाम को पीछे डाल दिया। इस बात की तो कभी फिक्र रही कि कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, इस बात की फिक्र ज्यादा हुई कि कैसे पढ़ते हैं। अगर हमारे मसलक के मुताबिक वो कोई चीज जो हमारे अमल में है वो करते हैं तो फिर तो हम उनको मुसलमान कहेंगे और दूसरों को तो हम जबरदस्ती जन्नत से निकलवा देंगे। ये वो तासुब होता है जिसकी वजह से मस्जिदें बर्बाद होती हैं। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इन इबादत खानों में कदम न रखें और अगर वहां जाएं भी तो डरते हुए जाएं। इनके लिए तो दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में अजाब अजीम। मशरिक और मगरिब सब अल्लाह का है, क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो? सब जगह अल्लाह की है, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह ताला बड़ी वसत वाला और सब कुछ जानने वाला है। वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे। इससे क्या पता चलता है कि इंसान मशरिक में रहे या मगरिब में, ईस्टर्न कंट्रीज में जाए या वेस्टर्न कंट्रीज में हो, हर जगह उसके दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए। कहीं जाकर अपने आप को इन चीजों से बेनियाज ना कर ले कि यहाँ मुझे कौन पूछेगा, यहाँ कौन है मेरा रिश्तेदार जो मुझे देखेगा, या मुझे अल्लाह का खौफ यहाँ रखना ज्यादा जरूरी नहीं। जहाँ भी जाएगा अल्लाह ताला उसको बिल्कुल वैसे ही देख रहा है जहाँ के वो उसको किस दूसरी जगह पे देख रहा था। हाँ, अल्लाह बड़ी वसत वाला और सब कुछ जानने वाला है। इनका कौल कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है, अल्लाह ताला पाक है इन बातों से। असल हकीकत ये है कि जमीन और आसमानों की तमाम मौजूदात इसकी मिल्क में है, यानी इसकी बादशाहत में है। सबके सब इसके मती फरमा बरदार है। वो आसमानों और जमीन का मुजीद है और जिस बात का वो फैसला करता है। वह इजा कदा अमरन फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून, और जब जिस बात का वो फैसला करता है इसके लिए बस ये हुक्म देता है कि हो जा, और वो हो जाती है। कितनी प्यारी सिफत है मेरे मालिक की कि बस इशारा कह के वो काम कर देता है। आज के दौर में एक लफ्ज बड़ा मारूफ है और उसको कहते हैं टच सिस्टम, रिमोट कंट्रोल। उसके बावजूद भी आप देखिए कि कितनी ही चीजें ऐसी होती हैं कि सब चीजें हमारे हाथों में रह जाती हैं और ऐन वक्त पर वो मशीनें हमें धोखा दे देती हैं। आप जरा अल्लाह ताला की कुदरत को महसूस करें, कोई मिसाल नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला जब एक कुन कहता है तो काम होने लगते हैं, फिर मायूसी किस बात की, फिर दुख किस बात का, फिर बीमार क्यों बीमारी के सही होने से मायूस है, फिर बे औलाद औलाद के होने से मायूस क्यों है। जब कभी अल्लाह को पुकारें तो कहें अल्लाह तू साहिब कुन फयकून है, तेरे हाथ में सब कुछ है, तू मेरा ये रुका हुआ काम कर दे। पूरे यकीन के साथ जब आप ये करेंगे अल्लाह ताला की रहमत जोश में आएगी। लेकिन होता क्या है कि हम लोग कुरान पाक चूंकि समझ तो पाते नहीं है, जो ही कोई आयत ऐसी मिलती है जिससे कोई इशारा मिल जाए तो हम उसका वजीफा बना के उसको कई बार पढ़ने लगते हैं और हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम क्या कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआएं मांगना शुरू करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान पाक की एक एक आयत को सही मानों में समझने वाला बना दे, ताकि हम जब भी इनको पढ़ें या सुने तो हमारा तेरे साथ ताल्लुक जुड़ जाए। वकाल अल्लज़ीना ला यालमून, नादान कहते हैं कि अल्लाह खुद हमसे बात क्यों नहीं करता, या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। ऐसी ही बातें इनसे पहले भी लोग किया करते थे। इन सब अगले पिछले गुमराहों की ज़हनियतें एक जैसी हैं। यकीन लाने वालों के लिए तो हम साफ साफ नुमाया निशानियां बयान कर चुके। इससे बढ़कर निशानी और क्या होगी कि हमने तुमको हक के इल्म के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। अब जो लोग जहन्नुम से रिश्ता जोड़ चुके हैं इनकी तरफ से तुम जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं हो। आपका काम क्या है? इन्ना अरसलना कबिल हक्की बशीरं व नसीरा वला तुसलु अनसखाबिल जहीम। इस आयत पे भी गौर करने की जरूरत है। हम भी अपने लिए इसमें से एक मुहासबे का नुक्ता नोट करेंगे कि क्या हम भी लाइल्म लोगों जैसी बातें तो नहीं करने लग गए, क्या हम भी अपनी जात यानी अपने मुकाम से बड़े हुए मुतालबे तो नहीं करते। जब कौमों का मिजाज बिगड़ जाता है, जब वो अपने ताल्लुक को अल्लाह ताला के साथ कमजोर कर लेती हैं, तो फिर इसी किस्म की बातें उनकी जुबानों पे आने लगती हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कल के, आज के और मुस्तकबिल के मुसलमानों को एक बात बताते हैं, और वो क्या? वलन तरदान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी ना होंगे। हाँ, इनको राजी करना है तो इसकी एक शर्त है, और वो क्या कि जब तक तुम उनके तरीके पर न चलने लग जाओ। साफ कह दो कि रास्ता बस वही है जो अल्लाह ने बताया, वरना अगर उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं। जिन लोगों को हमने किताब दी वो इसे इस तरह पढ़ते हैं जैसे किसको पढ़ने का हक है। कितनी प्यारी आयत है कि कुरान को वैसे पढ़ो जैसे इसको पढ़ने का हक है। मैं अपने आप से भी पूछूं और आप अपने आप से पूछिए कि क्या मुझे आज तक कितने साल हो गए कुरान पाक पढ़ते हुए, क्या मुझे कुरान पाक के वो 5 हकूक मालूम हैं जो हक्का तिलावत में आते हैं। याद दहानी के लिए दोहरा देती हूँ, कल क्यामत के दिन कुरान पाक हमसे अपने 5 हकूक मांगेगा। पहला हक क्या है कि क्या तुम्हारा इस पर ईमान था? इसको मानते थे कि ये ला रैब फी ही किताब है, कि इसमें कोई शक नहीं? जैसे कल माजी में कामयाब थी इसी तरह मुस्तकबिल और क्यामत तक लोगों की कामयाबी की दलील इसी किताब पर अमल करना है। दूसरा कुरान पाक जो हक हमसे क्यामत के दिन मांगेगा कि क्या तुम इसको सही तरह से पढ़ते थे। अपनी अपनी उम्रों को साथ साथ हम चेक करते जाएं और अपने आप से पूछें क्या वाकई सही कुरान पढ़ना आता है? काफ और काफ का फर्क आता है, आइन और आ का फर्क आता है? आपको मालूम है कि कुरान पाक में हल्का सा लफ्ज का फर्क कर दिया जाता है तो उससे मानी बदल जाते हैं, जबर जेर का मानी बदल जाता है। तो हम सब ने इंशाल्लाह यहाँ अपना मुखासबा करते हुए दुआ भी करनी है कि आज के बाद मैं इंशाल्लाह जो ही मौका पाती हूँ तो मैंने अब तजवीद के साथ भी कुरान पाक को सीखना है। हक कुरान पाक की तिलावत का क्या है कि कुरान पाक नहीं है उसको समझा जाए। हम जो बात कहते हैं अगर उसको समझे ना तो कितनी देर दिल लगेगा। मैं आप सबको देखती हूँ कि आप इतने प्यार से बगैर बोले दो दो घंटे बैठते हैं, आप नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि आपको समझ आती है। बिलफर्ज अगर मैं ये जो बात कर रही हूँ ये स्पेनिश जुबान में कर रही हूँ और आप लोगों को स्पेनिश नहीं आती, आप कितनी देर बैठेंगे? थोड़ी देर के बाद आप पहलू बदलेंगे और नतीजा क्या होगा कि फिर आप किसी भी वजह से उठ के चले जाएंगे। आज यही वजह है कि हमारा कुरान पढ़ते हुए दिल नहीं लगता। और मैंने ज्यादा तकलीफ जो अपने दिलों में महसूस की जब कुछ सिस्टर्स मिल के कुरान पढ़ती हैं, बीच में बातें भी चल रही हैं, बीच में खा भी रही हैं, पी भी रही हैं, और बाज दफा तो बीच में हंसते बोलते कपड़ों की बातें करते देखा गया। और आखिर में जब थक जाती हैं तो कहती हैं एक सफा तुम पढ़ लो एक सफा मैं पढ़ लेती हूँ, मानी कुछ का कुछ बन जाता है। हमने इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ मांगनी है कि जो कुरान पाक का मानी और मफहूम है उसको समझ सकें। चौथा हक क्या है कि फिर जो बात मालूम हो जाए उस पर अमल की कोशिश। हर बंदा अपने हिसाब से कोशिश करता है, अल्लाह ताला तौफीक दे देते हैं, कदम कदम चलेंगे इंशाल्लाह मंजिल मिल ही जाएगी। और पांचवा और आखिरी हक क्या है कि जो पढ़ लिया, जो समझ लिया, जो अपने अमल में आ गया, कोशिश में हो इस पे अमल करने की, अब इसको दूसरों तक पहुंचा दो। बल्लिगु अन्नी वलौ आया। इन पांचों पॉइंट्स की चेकलिस्ट बना लीजिए कि क्या मैं कुरान पाक के ये 5 हक अदा कर रही हूँ, क्या ये 5 हक दे रही हूँ। और हकूक के मामले को तो हर एक जानता है कि आज के दौर में तो शोर गुलगुला ही हकूक है, वीमन राइट्स, लेबर राइट्स, किड्स राइट्स। तो कल अगर क्यामत ने हमारा, क्यामत के दिन अगर कुरान पाक ने हमारा गिरेबान थाम लिया, किसको जवाब देंगे? कल हदीस में आता है कि क्यामत के दिन कुरान इस पाक में आएगा कि इसके दो होंठ होंगे और एक जुबान होगी, और ये कहेगा कि अल्लाह ताला तेरे बंदों ने मेरा हक नहीं दिया, और अल्लाह ताला हमें ऐसी हुज्जतों से महफूज रखे। फिर उसके बाद फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावती, वो लोग जिनको हमने किताब दी वो इसे इस तरह पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ने का हक है, वो इस कुरान पर सच्चे दिल से ईमान ले आते हैं, और जो इसके साथ कुफर का रवैया अख्तियार करें वही असल में नुकसान उठाने वाले हैं। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी वो नेमत जिससे मैंने तुमको नवाजा था, और ये कि मैंने तुम्हें दुनिया की तमाम कौमों पर फजीलत दी थी, और साथ ही साथ वत्तकु यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और डरो उस दिन से जब कोई किसी के जरा काम ना आएगा और न किसी से फिदिया कबूल किया जाएगा, न कोई सिफारिश ही आदमी को फायदा देगी और न मुजरिमों को कहीं से कोई मदद पहुंचेगी। दूसरी बार आयत इस बारे में आ रही है। यहूद अपने दौर के मुसलमान थे, उनका भी अकीदा आखरत ऐसे ही था जैसे मुसलमानों का था। उनके नबियों ने उनको यही बताया कि जो दुनिया में अमल करोगे कल उसी की बुनियाद पे जन्नत से जहन्नुम मिलेगी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब उनका अपनी किताबों से ताल्लुक टूटा, किताब के वो हकूक अदा ना कर सके, तो उसके बाद फिर जब भी वो अपनी आखरत का सोचते तो कुछ खुशफहमियों का शिकार हो जाते। कभी ख्याल आता कहते कोई बात नहीं, इब्राहिम हमें आके बचा लेंगे, हमें मूसा की सिफारिश काम दे देगी, हमें फलां नबी बचा लेगा, कुछ नेक बुजुर्गों की बातें करते थे। अल्लाह ताला ने सारी खुशफहमियां दूर कर दी कि वो कौम जिसको अल्लाह दुनिया में किताब दे, अगर वो उसके मुताबिक जिंदगी ना बसर करें तो कल क़यामत के दिन कोई सिफारिश कोई बदला नहीं मिलाएगा। अल्लाह ताला हमें खुद अमल करने की तौफीक दे। यहाँ भी हम मुहासबे का एक नुक्ता नोट करेंगे और वो क्या, क्या मैं क़यामत के दिन अपने आप को बेबस खड़ी हुई महसूस करती हूँ? क्या कभी मैंने अपने आप को मैदान महशर में तसव्वुर की आंख से देखा है? इसके बाद पारे के आखिर तक एक ऐसी शख्सियत का तस्करा है कि जिसके ऊपर जितना रश किया जाए तो कर लें, और वो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हम सब के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम नया नहीं, और इनसे हमारे दिलों में जो मोहब्बत है, नहीं है तो होनी चाहिए। यहाँ फिर एक नुक्ता नोट कर लेते हैं, पहले क्या मुझे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है? इस वक्त अपने दिल को टटोल के जवाब हाँ या नहीं में लिख लें, और फिर अगर इनकी जिंदगी के चंद वाक्यात को हम सामने रखें जिसका अल्लाह ताला यहाँ तस्करा फरमाते हैं, आखिर में जहाँ इनका किस्सा पूरा होगा फिर दोबारा अपने दिल को चेक कीजिएगा कि क्या वाकई ये वही इब्राहिम है जिनके बारे में इससे पहले मैं कुछ जानती भी थी लेकिन तसव्वुर नहीं था कि अल्लाह ताला ने इनको कितनी आजमाइशों में मुब्तला किया, लेकिन इसके बावजूद वो हर चीज पे पूरे उतरे।